सूरत तौबा हकीकत में सिर्फ सुनने वाली सूरत नहीं है, साथ साथ जब तक इंसान अपने दिल की बात ना कहता रहे तो बात नहीं बनती। अगर हम इस सूरत को ऐसे ही जाने देते तो हो सकता है कि हम इसका हक अदा ना करते। बात अल्लाह के साथ डील की, और आपने देखा है कि दुनिया में किसी की डील चल रही होती है तो बाज़ दफ़ा महीनों लग जाते हैं, कभी एक तरफ से, कभी दूसरे तरफ से, कभी कुछ। तो हमने देख लिया, खूब सोच लिया, बल्कि मुझे ऐसे लग रहा है कि इस सबक का बार बार बीच में से जिक्र आ जाना असल में हम सबको सोचने का मौका दे रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं। हर इंसान किसी के कहे बगैर ही अपना मुहासबा करता है। जैसे दिल खुद बहुत धड़कता रहता है ना, इस तरह हमारा दिमाग सोचता रहता है। हम कोई भी चीज़ बाहर देखते हैं ना तो उसका अपने अंदर भी असर महसूस करते हैं। तो ये जो अल्लाह सुब्हान तआला के साथ डील हमने देखी कि इसमें अल्लाह ताला ने किस तरह खूबसूरत तरीके से हमें मुख्तलिफ चीज़ें दी, अगर आप इस आयत को एक उचटती भी निगाह लगाकर व आयत 111 को आज इस सोच से देखिए कि अब मैं इस आयत को इस सोच के साथ अल्लाह हाफिज़ कहूँगी और अगली आयत पर चलूँगी कि क्या मैंने भी इस डील को कबूल कर लिया। अगर आप देखें तो इस आयत में अल्लाह सुबहाना ताला ने हमसे सिर्फ जान और माल मांगा ना, इन अल्लाहश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम, क्योंकि जान और माल में सब कुछ आ जाता है, हत्ता कि इंसान की अपनी औलाद भी इसी के अंदर आ जाती है, और जिससे प्यार होता है वो सब प्यारे भी इसी के अंदर आ जाते हैं, और माल इंसान को प्यारा बहुत होता है। अगर आप कह लीजिए कि लोगों को बहुत सारी चीज़ों में से चॉइस दे दी जाए तो वो मेरा ख्याल है सबसे पहले अपनी जान मांगेगा कि मुझे ज़िंदा रहने दिया जाए, और उसके बाद अपना माल मांगेगा। माल फिर वही चीज़ है जिसको ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिसाब के साथ है। फिर भी अन्ना लहुमुल जन्ना कहकर अल्लाह ताला ने यकीन दिला दिया कि ये होगा, और साथ ही साथ हमें इस बात का यकीन दिला दिया कि अगर तुमने ना बेचा, मिसाल है कि आज इतना कुछ सुनने के बाद हम कहते हैं सॉरी मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है, मैं ये डील नहीं करती, तो क्या होगा, ये ख़राब हो जाएगी। आज बेचेंगे तो मनों की है, और जिस दिन बगैर बिके दुनिया से गई तो मनो मट्टी के नीचे दबा दी जाएगी, ये बदन या जिस्म ख़राब हो जाएगा। फिर इंसान सोचेगा कि काश मैंने दुनिया में बेच दिया होता, चलो सेल लगा के एंड पे ख़त्म कर देता। कभी आपने किसी दुकानदार को देखा होगा, अक्लमंद दुकानदार ये होते हैं कि चीज़ों को साथ साथ निकालते रहते हैं, कम प्रॉफिट भी मिले तो ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आखिर में कुछ चीज़ें स्टक हो गई तो जितना प्रॉफिट बना है वो सारा उसके अंदर निकल जाएगा, इसलिए वो आखिर में सेल पे 70% पे भी निकाल देते हैं कि चलो ठीक है करवा दिया। लेकिन बाद में जब उनको अपने फिर चीज़ें फेंकनी पड़ती हैं, कोई एक्सपायरी चीज़ें, आपने स्टोर्स में देखा होगा कि बाद में 2 पाउंड की चीज़ें 1 पाउंड पे लगी होती है, 50p पे लगा देते हैं क्योंकि ले जाओ नहीं तो कल ये बिन में होगी। ना सिर्फ ये कि पैसे ज़ाया हो गए बल्कि अब उसको उठवा के फेंकने का भी देना पड़ेगा। बस इसी सोच के साथ मैं और आप अपने आप को देखें कि मैंने बिकना तो है, क्यों ना आज ख़ुद को ही कैश करवा दूं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितना बंदा दुनिया में ख़ुद को अल्लाह के रास्ते में खपा देगा उतना उसकी मौत भी आसान होगी, और आखिर में जाना तो है ही है ना। फिर आप देखिए जान मांगी है ना, ना दें, मैं नहीं देती, पीछे भागें कि भागे भागे नो, बहुत मुश्किल है, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी अगली आयत में, तौबा तौबा मैं नहीं करती। तो आप सोचिए कि एक दिन तो अल्लाह ने खुद ही ले जानी है, वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो बेहतर है कि दे दे। कोई मांगे ना चीज़ छीने तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कोई आपकी चूड़ी छीन के उतारेगा ना तो हो सकता है चूड़ी भी टेढ़ी हो जाए, आपके हाथ में ज़ख्म भी पड़ जाए, लेकिन जब आप अपने हाथ से आराम से उतार के देते हैं तो बच जाएंगे। तो आज अगर मैं इस जान को नहीं भी दूंगी तो कल मलकुल मौत आएगा और मुझसे ये जान लेकर चले जाएगा। नतीजा क्या होगा कि उस वक़्त जान की सख्तियाँ ज़्यादा होंगी। वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के हाथों नहीं बिकते ना, उनकी मौत बड़ी सख्त होती है। वन्नाज़ियाती गर्क़ा, इस तरह डूब डूब के फरिश्ता उनकी रूह खींचता है। हदीस में आता है कि रूह बंदे के जिस्म में चुपती रहती है और उसको फरिश्ते पे गुर्स मार मार के, यानी लोहे के हंटर मार मार के उसके जिस्म से निकालते हैं। तो आज छुप रहे हैं तो हो सकता है मौत के वक़्त भी छुपना चाहेंगे। फिर आप देखिए कि इतनी बड़ी डील, इतना बड़ी ज़ात दे रही है हमारी कीमत, बाद में हो सकता है इतनी बड़ी कोई पार्टी मिले ही ना, तो लिहाजा इस सौदे को मानना है। फिर इसके बाद आप देखिए कि सिफात पे गौर करके अगर हम आज आगे चलें कि युकातिलून फ़ी सबीलिल्लाही फ़यक्तुलून व युक्तलून, जंग करते हैं अल्लाह की राह में फिर कत्ल भी करते हैं और कत्ल होते भी हैं, ठीक है। इसको हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं कि अल्लाह के रास्ते में किताल के लिए इंसान जब निकलता है, जान उसकी जाती है, तो उस वक़्त उसको कितनी तकलीफ़ होती है। हदीस में था कि शहीद को जान निकलते वक्त सिर्फ चिमटी के काटने की तकलीफ़ होती है। यानी ये आप बात आज गौर से सुनिएगा इस एंगल में जो मैंने पीछे नहीं किया आपसे, कि मौत की सख्तियों से हम सब डरते हैं ना, मुझे तो बहुत डर लगता है क्या हाल होगा उस वक्त जब फरिश्ते खेचेंगे जान, लेकिन शहीद को मौत की तकलीफ नहीं होती। अल्लाह कहता है ऐसे प्यार से उनकी रूह को बदन से निकालूंगा कि जैसे सूरत वाकया में हम पढ़ेंगे, फरो हम व रेहान, के फरिश्ते फूलों के गुलदस्ते सामने करके खुशबें सुंघाते हुए जिस्म से जान को ऐसे प्यार से निकालेंगे कि जैसे किसी मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए सामने को खूबसूरत मंजर कर दिया जाए। ऑपरेशन करवाने से पहले एक हल्की सी नोक लगाकर उसको बेहोश कर दिया जाए ताकि उस सारी काटा छांटी का उसको कोई एहसास ना हो। इसी तरह शहीद की मौत बड़ी आसान होती है। फिर इसी तरह आप देखिए दूसरी चीज़ जिसका मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खौफ है, वो क्या है? कब्र का अजाब। और हदीस से ये भी पता चलता है कि शहीद को अजाब कब्र नहीं होता, बल्कि अगर मैं बड़ी मुख्तात बात करूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, कि शहीद अपनी कब्र का जो वक्त है ना, वो कब्र में नहीं गुजारता। शहीद की रूह जन्नत में अपने बरजख को गुजारती है। और क्या चाहिए? ये वो चीज़ें हैं कि जिनको पढ़ने के बाद एक बंदा हकीकत में सोच लेता है कि फिर मुझे अल्लाह सुब्हान ताला के सामने अपने आप को बेच देना। फिर आप देखिए कि वादन अलैहि हक्कम फित तौराती वल इंजील वल कुरान, यहाँ से अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें एक चीज़ सिखाई कि जब भी कोई सौदा करो, कोई डील करो, तो उसको लिख लिया करो। डॉक्यूमेंटेशन है ये, रेफरेंसेस नोट किया करो। ज़ुबानी कलामी बातों की कोई अहमियत नहीं होती। हम बस अब अपने प्यारों में जब बातें करते हैं तो बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं और फिर बिगाड़ भी बहुत बढ़ा जाता है। और अल्लाह ताला ने यहाँ तौरात और इंजील को कुरान के साथ पेश करके ये बता दिया कि ये सब अपने वक्त की बेहतरीन किताबें थी, लेकिन अब जब कुरान आ गया तो बात जो है वो पूरी हुई। यानी आज तुम्हें नहीं भी ये जन्नत मिल रही बज़ाहर, लेकिन ये बात लिखी हुई है, कल ये लिखी हुई बात दिखाकर अल्लाह सुबहाना ताला के लिए एक हुज्जत कायम कर सकते हो कि देखो अल्लाह ताला आपने कहा था और आप इसको बताइए। फिर इसके बाद देखिए वमन औफ़ा बिअहदिही ही मिन अल्लाह ही, फिर अल्लाह से ज़्यादा कौन हो सकता है अपने अहद को पूरा करने वाला। इसमें एक बात की रग़बत नहीं है कि प्लीज़ ट्रस्ट मी। तुम क्यों हेजिटेंट हो? तुम क्यों इतना रिलक्टेंट हो? तुम क्यों इस तरह सोचते हो? आओ तो सही, फिर देखो अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हारे लिए कितने रास्ते खोल देता है। अब यहाँ तक अल्लाह की तरफ से डील हो गई, फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही, बस खुशियां मनाओ अपने इस सौदे पर जिसका सौदा तुमने उसके साथ किया है। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आप इस जुमले को अपनी एहसासात में देखें तो आपको इसमें एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता मिल रहा है कि अल्लाह ने डील अपनी तरफ से पक्की कर दी। कभी ऐसा होता है किसी ने किसी से रिश्ता मांगा होता है, तो जब मांगते हैं तो उस वक्त आपकी तरफ से तो ओके है ना, अब लड़की वाले हाँ ना करेंगे तो उस पर अगली बात चलेगी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ ऐसे लगता है कि तुम ओके करो ना करो, तुम हाँ करो ना करो, मैंने हाँ कर दी और साथ ही साथ मुबारक भी दे दी। ये जो फस्तबशिरू का लफ्ज़ है ना, इसको पढ़ने के बाद तो ऐसे ही लग रहा है कि अल्लाह सुब्हान तआला चाहते हैं कि बस अब मुबारक हो गई, हाँ हो गई जी। कोई भी काम जब कोई करता है ना, तो एकदम उसको इस तरह से ले लेता है कि बस ये हो गया अब इसको कर ले। ये कॉर्नर है, अल्लाह हमें इज्जत बख्श रहा है। बिक जाओगे तो तुम्हारी कदर होगी, नहीं बिकोगे तो खुशियां तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगी। अब एक चीज सोचिए, आप रब के हाथों बिकना चाहती हैं? खुद से पूछिए, क्या रब के हाथों बिकने से पहले खुद को संवारूंगी? नहीं। कोई भी घर होता है तो रेनोवेट होता है ना, पीछे भी हमने बात की थी इस पे थोड़ी सी। तो जब एक बंदा अल्लाह के हाथों में खुद को बेचना चाहता है ना, इस पे उसका दिल जम जाता है, तो हर दिन वो अपना तज़किया करता है, क्लीनलीनेस, प्यूरिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन, वो अपने आप को संवारता है। क्योंकि रद्दी और बेकार चीज़ों को तो इंसान नहीं हाथ लगाते। कभी भी कोई ऐड देखें घर बिकने का, तो वो कहते हैं अभी नहीं दिखा सकते, अभी हम घर को सही सुथरा कर रहे हैं। तो फिर इंसान अपनी आदतों का तज़किया करता है, अपने अकीदे का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया और हमारी सिस्टर यहाँ बहुत अच्छी एक, उन्होंने अपना घर खोला। इस सैटरडे हमने मदर डॉटर सेशन शुरू किया और उसमें हमने तज़किया नफ्स को शुरू किया। इस दफ़ा इंट्रो हुआ क्या होती है प्यूरिफिकेशन। अब हर वीक उसमें हम एक बुरी आदत देखेंगे अपनी। इस दफ़ा का टॉपिक ही अगला ईगो है, फर्स्ट टॉपिक करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो जब अल्लाह के हाथों में बिकना है तो ऐसे मुझे ऐसे रब को खरीदेगा? शादी होनी होती है तो लड़की को एड़ी चोटी का जोर लगा के सजा देते हैं, साफ सुथरा करते हैं कि इसने अब अगले घर जाना है। तो फिर आप सोचिए कि अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है। इसके लिए फिर इंसान अपने आप को लेके आएगा। इमाम जाफिर सादिक एक बुज़ुर्ग थे, कहते हैं कि मैं इस नफ्से नफीस का सौदा अपने रब से करता हूँ, सारी कायनात में इसका कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता। यानी उन्होंने अल्लाह को ओके कह दिया जुबान से, हमें तो अमल से कहना है ना। तो जिस तरह से ये सारी बातें हमारे हाथों में आती हैं, इसको हम अल्लाह के सामने लेके आते हैं और अल्लाह ताला को बताते हैं कि अल्लाह हम आपके हाथों में बिकना चाहते हैं। वज़ालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम, इससे खूबसूरत कोई सौदा और होगा नहीं। ये वो सौदा है जो तुमने अपने रब से किया। यहाँ देखिए लफ्ज़ बा या तुम आया ना, आपस में सौदा करना, म्यूचुअल सौदा, किसी का इधर से उधर सौदा करना, ट्रेडिंग की माने। इसी से लफ्ज़ बैत भी है। इसी आयत को बाज़ लोग कहते हैं ये बैत उकबा के मौके पर नाजिल हुई। यानी पूरी सूरत जो हम पढ़ रहे हैं तौबा, सूरह तौबा मदनी है, लेकिन ये आयत इसकी मक्की है। और किसी सूरत को मक्की या मदनी कब कहा जाता है? जब उसमें कसीर तादाद उस मौके की हो। तो ये आयत उस सहाबा के दौर की है जिसमें उन्होंने अल्लाह के नबी से बैत की थी, और जिन लोगों ने आपको मदीना मुनव्वरा बुलाया था, आपने उनसे खुल के बात की थी कि देखो लेके तो जा रहे हो, लेकिन क्या इसके तकाजे निभा सकोगे, मुश्किल पे तो नहीं पड़ोगे। और उस मौके पे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन इस बैत में गवाह के तौर पे हाजिर थे, उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया था कि हाँ इस मोहम्मद से हमारी जंग है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये हमारा है, हमने इसको निकाला नहीं हुआ, ये हमारा खून है, अगर इसको जाके छोड़ देना है तो आज ही छोड़ दो। यानी वो एक गवाह के तौर पे बैठे थे। तो बास कहते हैं कि बाया तुम में बैते उकबा की बात है जो सहाबा के साथ अल्लाह के नबी ने की, और उस वक्त सहाबा ने ये बात कही थी कि हाँ हम अपनी जान पर खेल कर अल्लाह के नबी की इज्जत करेंगे, हिफाजत करेंगे, हत्ता कि हम अपनी औरतों और अपने बच्चों से ज़्यादा आपका दिफा करेंगे। इस पर इंशाल्लाह सूरह फतह की आयत नंबर 10 में ये बात आएगी। तो गोया कि आप कह लीजिए कि ये कैसा सौदा। अब आयत 112 पे ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए। अत्ताइबून, करने वालों को पहले क्या करना पड़ेगा? तौबा। ये बड़ा खूबसूरत और रकीक नुक्ता है, वेरी सॉफ्ट पॉइंट। तौबा कौन करता है? जिससे पहले कोई गुनाह हुआ था। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अल्लाह से सौदा करने वाले से पिछली ज़िंदगी में बड़े बड़े गुनाह भी हो सकते हैं, तभी तो तौबा करेंगे ना। बस हम सोचते हैं, बल्कि किसी को नेकियां करते देखते हैं ना, कहते हैं ये जद्दी बुश्ती नेक है, ये हाफिजों का ख़ानदान है, ये आलिमों का ख़ानदान है, और ये तो बस ही बड़े नेक है। नहीं, नबियों की मिसालें देख लीजिए। आदम, रब्बना ज़लमना अनफुसना, दरख का फल चख लिया नबूवत से पहले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कत्ल हो गया, कत्ल ख़ता था लेकिन कत्ल हुआ ना। तो क्या पता चला कि अल्लाह के हाथों बिकने के लिए ये शर्त नहीं है कि एक बंदा गुनाह प्रूफ हो, शर्त ये है कि तौबा कर ले, पिछली ज़िंदगी के गुनाहों से माफ़ी। फिर दूसरी चीज़ है अल आबिदून, इबादत गुजार, बंदगी वाले। ये है वो मेन नुक्ता जो बंदे को अल्लाह के हाथों बेचता है। जब तक मैं खुद को बंदा नहीं समझूंगी, मैं रब को रब नहीं समझूंगी। बंदगी, आजजी, इयाक नअबुदु वइयाक नस्तईन, अकड़ते नहीं है। याद रखिए, अकड़ी हुई गर्दन वाले लोग अल्लाह के हाथों नहीं बिकते। कई कई मौके पे तो उनकी अना पे इस तरह की चोट पड़ती है कि जैसे चीखें निकल जाएं, जख्म के ऊपर पाँव पड़ जाए, लेकिन ये लोग बंदा समझते हैं। देखिए ना, आप अपनी चीज़ को आला समझ रहे हैं तो आप किसी को बेचेंगे? जो लोग अपनी लड़कियों को सोने का किंगरा समझते हैं वो देते ही नहीं, कहते नहीं अभी हमारी बेटी के काबिल रिश्ता ही नहीं आया, और फिर बेटियां बड़ी हो के उनकी वैल्यू और कम होती जाती हैं और आने वाले रिश्तों का मैार कम होता जाता है, फिर सोच में पड़ते हैं। तो आबिदून क्या है कि खुद को बड़ी चीज़ ना समझो। इसके नीचे कोड वर्ड्स लिखिए कि अल्लाह क्या तो बेचना है तो खुद को छोटा समझे। और ये अंदर दिमाग में समाया होता है ना बंदे के, को खुद को बड़ा समझना, तो वो अल्लाह सुबहाना ताला के रास्ते में निकल ही नहीं पाता और वो अल्लाह का बनता ही नहीं है। फिर आगे देखिए अल्हामिदून, तारीफें करने वाले, अल्लाह के गुण गाने वाले, उनकी जुबानें हर वक्त अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी सुबहान अल्लाह, कभी माशा अल्लाह, कभी इंशा अल्लाह, कभी अस्तग़फिरुल्लाह। आप देखे बंदे मोमिन खुशी गम दुख सुख हर मौके पे अपने रब को याद करता है। फिर आगे देखिए सायहून, और गर्दिश करने वाले। पीछे बताया आपको कि सायहून, साखा से सियाहत करना उर्दू में हम बोलते हैं, इससे मुराद टूरिज्म नहीं है, ये अल्लाह के रास्तों में निकलने वाले। अब सवाल पैदा होता है कैसे? तो पांच मुख्तलिफ इसके नुक्ते नोट कर लीजिए कि अल्लाह के रास्ते में निकलने से यहाँ क्या मुराद है, कैसे एक बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है। तो सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में निकलता है अल्लाह का दीन सीखने के लिए। ये सियाहत का पहला दर्जा होता है। जितना बंदा अल्लाह का दीन सीखता जाता है उतना वो अल्लाह के हाथों बिकने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दूसरा है अल्लाह के दीन को नाफिज करने की जिद्दोजहद में, जिसको आप कह सकते हैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। तालीम व तदरीस, इल्म के सिलसिले में मदद करना, कभी कहीं इंचार्ज बन जाना और कहीं बना दिया जाना, यानी कहीं किसी को कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है कहीं कुछ, यानी ऐसा बंदा फिर अल्लाह के दीन को नाफिज करने में हर वक्त तैयार रहता है। फिर तीसरी सियाहत क्या होती है? हिजरत के लिए निकलना, अल्लाह के दीन के रास्ते की हर वो रुकावट दूर कर देना जो कि इंसान को रोके। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह के रास्ते में भागने नहीं देती, तो एक एक करके उसको छोड़ता जाता है। किसी दौड़ने वाले को सोचिए, हाथ में बहुत बोझ था, वजन पकड़ा हुआ था, भागना है भागना, एक एक करके एक एक बैग फेंका, फिर थोड़ी दूर गया तो वो छतरी भी फेंक दी, थोड़ी दूर गया तो स्वेटर भी फेंक दिया कि बस अपनी जान बचा लूँ। तो सियाहत करने वाला अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनने वाली एक एक चीज़ से हिजरत करता है, हत्ता कि फिर कभी अगर जगह और ज़मीन के टुकड़े भी छोड़ने पड़े तो छोड़ देते हैं। फिर इसी तरह चौथी चीज़ होती है जिहाद के लिए भागने वाले। किताल का मरहला कभी आ जाए तो फिर वो ये नहीं उल्टी सीधी बातें कहते कि आज किताल तो हो ही नहीं सकता, नहीं, फिर तबूक आ जाती है कभी तो तबूक के लिए भी निकलते हैं। फिर इसी तरह पांचवा इसका स्टेप होता है हज और उमरे के लिए निकलना, क्योंकि ये भी तो इस उम्मत का जिहाद है। गोया कि आप कह सकते हैं साहून कौन है? नेक मकासिद के लिए दौड़ धूप करने वाले। इसी तरह इसमें छठी एक चीज़ नोट कीजिएगा, रिस्क हलाल की तलाश में सरगर्दा लोग, जिनको पता है कि अगर बच्चों के पेट में हराम के लुक में चले गए तो इनमें से एक भी काम उनको समझ कोई नहीं आएगा, ऐसे लोग फिर भाग दौड़ करते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ताजिर सुदूक, सच्चा ताजिर कल क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा। उसने अपनी तिजारत में इतना सच बोला कि अल्लाह ने उसका दर्जा आगे कर दिया। फिर इसी तरह एक छठा स्टेप इसका नोट कीजिएगा सियाहत का, और वो क्या है? कायनात में गौर व फिक्र के लिए, आसारे क़यामत जिसको आप कहेंगे, कि जिसको आप कह सकते हैं कि इन्ना फी खल्क़ समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़ लैली वन नहार। कैसा बंदा अगर सैर भी करता है, ये तो नहीं है कि मोमिन कमरों में बंद होकर बैठ जाते हैं, हवा नहीं लगती उनको अब दुनिया की, नहीं, वो वीकेंड्स पे अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, वो छुट्टियों में अपने बच्चों को कभी पहाड़ी मुकामात पे ले जाते हैं, कभी समंदर के किनारे ले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके गाफिल नहीं होते, बल्कि बच्चों को कहते हैं, आओ बच्चों देखो ये पहाड़ किसने बनाया, ये सूरज कैसा चमक रहा है, ये चांद कैसे आ रहा है, ये क्या है, यानी कायनात पे गौर व फिक्र भी असल में सियाहत है। तो आप कह सकते हैं आज सारे कायनात देखने के लिए, कभी उजड़ी हुई बस्तियों में से वो गुजरता है तो अपने आप को अल्लाह के सामने ले आता है। इस तरह से ये लोग असाहून बनते हैं। और उसके बाद का मरहला अगर आप देखें कि सियाहत हो गई, और आप यहाँ ये नोट कीजिएगा कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के इतने मुख्तलिफ डायमेंशन हैं, हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें। ये मैंने आपको 7 नुक्ते लिखाए हैं ना सायहून के, खुद को पूछिए कि मेरी दौड़ धूप किसके लिए है, मैं ज़िंदगी में किस मकसद की धुन में सवार हूँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, लेकिन वो सिर्फ एक ज़रूरत थी। सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह की राह में एक सुबह या एक शाम को निकलना खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया में मौजूद हर चीज़ से बेहतर है। आप जब सुबह क्लास के लिए आते हैं ना, कभी उस वक्त आप अपने आप को अल्लाह की निगाहों से देखिए। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को बताता होगा कि देखो ये मेरी बंदियाँ आज मेरे लिए निकल रही हैं। अल्लाह को एक कदम इतना प्यारा लगता है, और अगर आप हफ्ते में 4, 5, 6 दिन आते हैं तो अल्लाह को कितना प्यार आता होगा। इसी तरह बुखारी की रिवायत है कि वो कदम जो अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हो जाए, यानी जिन पे मिट्टी पड़ जाए, थोड़ी सी डस्ट आए, अब यहाँ तो डस्ट कोई नहीं होती लेकिन कुछ ना कुछ तो पड़ता ही है ना। मैं जब नॉर्वे में पढ़ाती थी आते तो मैं कहा करती थी कि जिन रास्तों पे बर्फ़ लग जाए, क्योंकि सर्दियों में हमारे कदम बर्फ़ के अंदर धंस जाते हैं ना, तो जिन रास्तों पे, जिन कदमों पे गुबार आ जाए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ने उन कदमों पे जहन्नम की आग को हराम करार दिया। ये इल्म का रास्ता है, इसके ऊपर अल्लाह को कितना प्यार आता है। बाकी सारे काम होते ही इसके बाद है, और ये बुखारी की रिवायत है। फिर अगली सिफत देखिए, राकियून, रुकू करने वाले, रुकू की बात यहां लग से क्यों आई? आजजी के ये नहीं कि अब इस रास्ते में आए हो तो कठोर और दूसरों का जीना हराम कर दो, तुम गुनाहगार, तुम खराब, तुम ये वो, बल्कि अंदर टूटाओ। एक कवियतर राकेउन, साथ ही अगली भी देख ले साजिदोन। हम सब जानते हैं, एक को रुकू कहते हैं, एक को सजदा कहते हैं, फर्क क्या दोनों में? जरा अपने पोस्चर को सोचिए नमाज की हालत में। जब हम रुकू करते हैं तो क्या हो रहा होता है? आप सीधे खड़े थे, आप देखिए जब हम सीधे खड़े होते हैं ना, अब आप थोड़ा सा इन दोनों का रब देख लीजिए। जब हम सीधे खड़े होते हैं ना तो ये दुनिया हमारे सामने है, जैसे अगर मैं सीधा देखूं मुझे सामने पूरी वॉल दिख रही है। अब मैंने इधर से रुकू शुरू किया, अब आप देखिए यूं, अब ये रुकू की कैफियत ही ना, अब क्या दिख रहा है? ऑफकोर्स आंखें नहीं बंद करनी होती नमाज में, अब जब मैं यूं देखूंगी ना तो मुझे नीचे जमीन दिखेगी, हो सकता है खूबसूरत सा कारपेट दिख जाए, हो सकता है फ्लोर पे कोई अच्छी सी चीज हो। पहले तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा था, यानी आप कह लें 100% चीजें, नहीं तो चले 90% चीजें मुझे सामने अपने दिख रही थी। जो ही मैंने रुकू किया ना तो मुझे सिर्फ 10% दिखने लग गई। बल्कि आप नोट करें कि जो चीज खड़े हुए दिख रही थी ना और जो नहीं दिख रही थी वो रुकू में दिखती है। बात वैसे हम सीधा खड़े होते हैं तो मोस्टली हमें अपने कदम नहीं दिखते, अब ये दूसरी कैफियत है। अब इसके बाद असाजिदून, जमीन में घुस जाए अब क्या दिखेगा? वस्जुद वक्त अरिब, सजदों में तो सिर्फ रब दिखता है। ये एक इंसान का टर्निंग पॉइंट होता है। अल्लाह सुबहान तआला ने अपने साथ सौदे करने वालों को बता दिया कि लोगों को ओवरनाइट मत खींचो, तब्दीली आते आते आती है। देखिए रात एकदम सुबह में नहीं ढलती, बीच में ग्रेज एरिया आता है, सुबह सादिक सुबह काजिब आती है, फिर सूरज निकलता है, फिर दोहा का वक्त है। यही कैफियत इंसानी तबीयत में है। पहली बात देखिए ताइबुन, बड़ा से बड़ा गुनाहगार शख्स है, ताइबुन तौबा करो, मोहलत दो लोगों को, सर पे ना सवार हो जाओ। ये हमारी तबलीग का एक बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है कि हम फतवे भी दे देते हैं और लोगों को इस तरह से हम कह देते हैं कि इन्होंने नहीं चेंज होना, ये नहीं होंगे, नहीं रुकू फिर सजदे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी कैफियत जब हो गई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिफात जो है ना ये इनफरादी हैं, कॉमन है, हर बंदे की अपनी ज़ात के साथ है। मैं अल्लाह के यहाँ तो बिकना चाहती हूँ तो मुझे अपनी ज़ात में ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अब ये जब सब हो गई, अब ये हो गए, खुद से पूछिए क्या मेरे ये 6 मरहले तय हो गए? अगर मेरी किरदार साजी हो गई, शख्सियत मेरी बन गई, तो फिर उसके बाद अगले 3 काम जो है ना इसका ताल्लुक इज्तमाईयत से। अब इसके बाद आमिरून बिल मारूफ, अब आप नेकी का हुक्म देने वाले बनेंगे, वन नाहून अनिल मुनकर, फिर बदी से रोकने वाले बनेंगे, वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। ये 3 काम अगर आप इकट्ठे लिखे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि अल्लाह सुबहाना तआला ने खुशखबरियां तो पीछे दे दी थी, जालिका फौजुल अजीम, कामयाबियां, लेकिन ये 3 काम असल में दीन की अमली जिद्दोजहद है। देखिए शुरू से आपको शायद 20 बार अब तक ये बात कह चुकी होंगी कि दीन के काम के 2 दर्जे होते हैं। एक आपका अपनी जात को ठीक करना, पहले अपने सरकश घोड़े को नफ्स के दबाना, इसमें रियासतें इबादत की सूरत में होंगी। लेकिन जब आप खुद ठीक हो जाते हैं तो फिर आप ठीक अकेले नहीं रह सकते जब तक कि आपके इर्द गिर्द वाले ठीक ना हो, तो फिर इंसान को वो काम करने पड़ते हैं जो काम नबियों ने किए हैं। आप कह सकते हैं कि पहले 6 काम जो अभी तक पढ़ चुके हैं ये मुकाम अब्दियत थी, अब्द होने का लाजमी नतीजा है अताएबून से लेके साजिदून तक। अब जो आखिरी 3 काम है ना ये कारे नबूवत है, नबियों का काम है। अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए लेकिन आपका काम नहीं गया। आज नबूवत का मुकाम किसी को नहीं मिल सकता लेकिन कारे नबूवत उम्मत के एक एक बंदे को मिला हुआ है कि कुन तुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, ठीक है? जब बंदा अबदियत के मुकाम पे पहुंच जाता है ना तो उसके बाद ये कारे नबूवत के काम मुश्किल नहीं लगते, फिर इंसान ये काम करता है। आमिरूना बिल मारूफ और नाहून अनिल मुनकर पे बहुत बात हो चुकी है, आपने सूरत आल इमरान में सुना, बहुत कुछ सुना, इस सूरत की आखिरी लेसन में भी इस पे बात आएगी। लेकिन थोड़ी सी बात करके खुश हो, वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह पे सवाल पैदा होता है कि अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, इससे क्या मुराद है? नीचे एक लफ्ज़ लिख लीजिए, चौकीदार। हिफाजत कौन करता है? गार्डमैन और सिक्योरिटी मैन। ईमान वाला अल्लाह की हदों की हिफाजत कैसे करता है? नंबर एक, सबसे पहले वो खुद मुहतात ज़िंदगी बसर करता है। खुशियों में बहकता नहीं कि खुशी में अल्लाह की किसी हद को तोड़ दे, ठीक है, अपने अमल से। पीछे बात की थी कि मोमिन की ज़िंदगी में दो मुकाम तो आ सकते हैं, एक नहीं आ सकता। एक मुकाम क्या होता है? अल्लाह भी खुश, बंदा भी खुश। और ये अमूमन हमारी हालत होती है। हम भी इबादत को इंजॉय करते हैं, नमाज रोज़े के साथ खुश होते हैं, अल्लाह भी हमसे खुश हो रहा होता है। अल्लाह ताला में कहता है अपने घर वालों के लिए खाना पकाओ, इबादत है तुम्हारी। हम भी खुशी खुशी खाना पकाते हैं, अल्लाह भी खुश हो रहा है। अल्लाह शौहर को कहता है रिस्के हलाल कमाओ, वो खुशी खुशी कमाते हैं। यानी बंदा मोमिन की आम स्टेज जो होती है ना, वो ये होती है, अल्लाह भी खुश वो भी खुश। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मामले नेमते मिलती जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह भी नेमते देता है। दूसरी कैफियत क्या होती है कि बंदा ना खुश, अल्लाह फिर भी खुश। मसलन दुख, बीमारी, परेशानी, आप कहते नहीं रदी तो बिल्लाही रब्बन, आप अल्लाह की तरफ से दी हुई मुसीबत मुश्किल दुख पे भी खुश रहे। अब आप तो थोड़े सैड हैं लेकिन अल्लाह आपसे खुश हो रहा है, ठीक है। इसी तरह शरीयत के बहुत सारे हुक्म ऐसे हैं कि तकलीफ आती है, क्यों नहीं आती? व नहन नफ्स अनिल हवा, ख्वाहिश है, सामने चीज़ है, सब खा रहे हैं, आप नहीं खा सकते, सब पहन रहे आप नहीं पहन सकते, सब उस महफिल में इंजॉय करें आप नहीं कर सकते, क्या दिल पे चोट नहीं पड़ती? पड़ती है। तो ये दूसरी कैफियत कभी कभी आती है कि बंदा ना खुश है, उदास है, दुखी है, लेकिन इसलिए कि करना है। जैसे आप देखिए ना, फयक्तुलून व युक्तलून, अब जिहाद में चोट नहीं लगती तो तकलीफ हो रही होती है ना, लेकिन बंदा हुई। लेकिन एक तीसरी कैफियत, ये बंदा मोमिन पे कभी नहीं आती, ये लिख लीजिए, ये है यहाँ हाफिजून अली हदूदिल्ला। और वो क्या है कि बंदा तो खुश है, वो तो खुशियाँ मना रहा है, वो तो लुडियाँ डाल रहा है, वो तो भंगड़े डाल रहा है, वो तो अपनी किसी खुशती में हाफिजून अली हदूद अल्लाह की बजाय तोड़ने वाला बन जाता है अल्लाह की हदों को, कि बंदा खुश है लेकिन रब को उस पर गुस्सा आ रहा है। बस ये मुकाम नहीं आना इंशाल्लाह ज़िंदगी में, तो अल्लाह आपको खुशियों में तकलीफ़ नहीं देगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह की हदों की हिफाजत किस तरह से होती है कि जब बंदा खुद तकवा के साथ हराम हलाल का फ़र्क रख के जीता है, तो फिर दूसरे लोगों को भी इसी की दावत देता है। अपने अमल से भी बता रहा होता है, लेकिन कॉल से भी कह देता है, कितना करीबी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन वो उनको बता देता है कि मैं आपकी खुशी में बहुत खुश हूँ लेकिन मैं अपने रब को नाराज़ नहीं कर सकती। फिर इसी तरह आप देखिए कि बस दफ़ा होता क्या है कि लोगों को खुश रखते रखते रब को नाराज़गी का जब मौका आ जाए ना, तो बंदा वहीं रुक जाता है, सॉरी इससे आगे मैं नहीं जा सकती। अब आप सोचिए कि एक चौकीदार कैसा होता है, घूमता फिरता है ना पूरे घर में, बाहर देखेगा उधर टार्च डाल रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। अब वो कमरे में बंद बैठा रहे तो घर की हिफाजत क्या होगी? इससे मोमिन की ज़िंदगी का एक नक्शा दिखता है कि ईमान वाला या अल्लाह क्या तो बिकने वाला कमरों में नहीं बंद हो जाता, वो ज़िंदगी में घूमेगा, चलेगा। देखिए अगर आप इस दुनिया में नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है। जैसे एक मुझे याद आ गई किसी की बात, थोड़ी सी फ़नी सी लगती है। एक कोई होंगे इमाम साहब थे या मौलवी साहब थे, तो वो दर्स देते हुए फिल्मों की कोई बात करते हैं ना, फिल्में लोग देखते हैं ये वो है। तो किसी ने बाद में उनको कहा कि ये मौलवी साहब को कैसे पता कि ये फिल्में चल रही हैं आजकल, या मौलवी साहब को क्या पता कि आजकल ये ट्रेंड है। अब ये उनका केस उधर छोड़ दीजिए, लेकिन हमें इस दुनिया में चलते फिरते कैसे साए होना फिल होना है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। देखिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ दुनिया लगी हुई है ना, बच्चे भी हैं, औलादे हैं। अब मिसाल आपकी यंग बच्ची है, उसको शॉपिंग करनी है, आप कहते हैं नहीं सवाल नहीं पैदा होता, मैं तो ना जाती, तुम खुद जाओ, जाके ले आओ जो लाना है। आप अकेली उसको उसकी दोस्त के साथ बाजार भेजती हैं और वो बिल्कुल अपने आज़ाद माहौल में जाके कोई ऐसा ड्रेस ले आती है जो हदों को टकरा रहा है, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता? तुम्हें जाना है ना, चलो मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। यानी आप सर पे रह के हिफाजत करेंगे, फिर बच्चों के माइंड आप बनाते हैं, उनके जहन सेट करते हैं, तो गोया कि आप सारी बातों को जमा कर लें, तो एक बहुत खूबसूरत किरदार हमारे सामने आ गया कि जो इन सब कामों को करता है, तो वह बशरिल मोमिनीन। नोट कीजिए, अब ईमान का लफ्ज़ आया, इन सारी चीज़ों के जमा होने से फिर ईमान बनता है। और ये वो कैफियत है, ख़ास तौर पे ये जो आखिरी तीन चीज़ें हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन भी है। इज्तमाईयत की ज़िंदगी बसर करता है एक मोमिन, और दुनिया से गंदगी को दूर कर देता है। एक हल्का सा माइंड मैप मेरे जहन में आया था, ये मैंने बनाया, अगर आपको दूर से दिखता है तो देख लीजिए। देखिए, अल्लाह ने पहली आयत के आखिर में, 111 के आखिर में लिखा, अल्फौजुल अज़ीम, कामयाब होना चाहते हैं ना, ये हमें दे दिया। अब इसके अंदर से अगर आप इस अल्फौजुल अज़ीम है, फ़यक्तुलूना वयुक्तलून है, अगर नीचे देखें ना, हाफिजून अली हदूद इल्ला, नंबर एक, बजरिया अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, इंसान लोगों को जब अच्छी बात का हुक्म और बुरी बात से रोकता है ना, तो नंबर एक यह है कि वो खुद अल्लाह के दीन की हिफाजत भी कर रहा होता है ना। जैसे उलमाए दीन हमें बता देते हैं ना, ये हराम है ये हलाल है, तो उलमाए दीन भी इसी में आते हैं। फिर इसे आप देखिए, तायबुन आबिदुन हामिदुन साइहुन राकिउन साजिदुन, और आखिर में फिर आप देखिए कि हाफिजून अली हुदूदिल्ला। तो एक छोटा सा माइंड मैप था जो हम सबको ये सोचने पे माइल करता है कि हम इस सौदे में कितने पक्के हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस पे ले आए। क्यों नहीं आ पाते, मुझे बहुत ही खूबसूरत कुछ कॉल मिले इब्ने जोज़ी रहमहुल्ला के इस दुनिया के बारे में कि हम क्यों नहीं अल्लाह के हाथों में बिकते, बस वो आखिरी बात करके तो हम फिर अगली आयतों पर चलेंगे। कहते हैं कि दुनिया तालूत की नहर की तरह है। याद आइए कहाँ पड़ी है, दूसरे पारे के आखिर में क्या कहा था उसने, इल्ला मनेख तरफा गुरफा तुम भी यदि, इस नहर से गुजरो और जिसने इधर से बस एक चुल्लू भर पानी ले लिया वो तो मेरे से है, और जिसने मन शरीबा, जिसने पी लिया फिर वो मुझसे नहीं। तो वो कहते हैं कि दुनिया तालूत की नहर की तरह, जो बंदा इधर से बस एक चुल्लू भर पानी लेके गुजरेगा ना, वो तो आगे जाके कामयाब होगा। फहजमूहुम बिइज़्निल्लाह, आगे आपने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन जिसने इस दुनिया की नहर से पेट भर के पानी पी लिया, उसकी फिर हिम्मत जवाब दे देती है। फिर एक दूसरा उनका कॉल था, कहते हैं कि ये दुनिया शराब की तरह, वाइन की तरह, जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती है। होंठ सूखते हैं ना, आप सोडा पियेंगे थोड़ी देर बाद और प्यास लगेगी, वो तलखी सी लग जाती है। तो इस दुनिया के अंदर से बस सूखे सूखे गुजार जाए, ऊपर इस नहर के कदम रहेंगे ना, सिर्फ कदम भीगे तो आप ठीक रहेंगे, और अगर आप इसमें डूब गए ना घुटनों तक सर तक, तो फिर ये आपको अपने अंदर डुबोलेगी। एक आखिरी उनका कॉल है, कहते हैं कि ये दुनिया आपके साए की तरह, दिस लाइफ इज जस्ट लाइक योर शेडो, आप इससे मुंह मोड़ के आगे जाते हैं, इमेजिन करें आप सीधा जा रहे हैं तो आपका साया आपके पीछे पीछे आ रहा है, आप जूं ही इसकी तरफ टर्न करते हैं तो ये आपसे दूर हो जाता है। सारी बातों में जो मैसेज है वो क्या है कि इस दुनिया के अंदर जितना खुद को डुबोएंगे उतनी ही मुश्किल होगी। अल्लाह सुबहान तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। अब यहाँ पे ये टॉपिक पूरा हुआ। कुछ लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ ये सौदे किए थे, उनको इस रास्ते में क्या मुश्किल आईं, उसमें सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत 113 पे चलते हैं, बज़ाहर बिल्कुल टॉपिक चेंज हो रहा है लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनके अंदर बड़ा गहरा रब्त है। मा काना लिन नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के लिए ये लायक ही नहीं, यानी इट डजेंट सूट्स देम। ये जो लफ्ज़ है ना माँ का आना, इसका मतलब ये कि ये उनको लायक ही नहीं, जिसको हम कहते हैं ना ये बात तो आपको सजती नहीं, आप इतने आला मुकाम पे हो कि इतनी छोटी बातें कर रहे हैं, ये मुराद है कि नबी को ये सूट नहीं करता और ना ईमान वालों को, क्या कि वो बख्शिश मांगे मुशरिकीन के लिए अगरचे वो उनके करीबी रिश्तेदारी हों। कब, मिम बादी मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, इसके बाद जबकि उनके ऊपर वाजे हो चुका कि वो जहन्नुमी हैं। बुखारी की रिवायत में आता है कि ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफ़ात के मौके पे नाजिल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हिदायत की पूरी कोशिश कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला मेरे चचा को ईमान दे दे, वो कलमा पढ़ ले। करीब थे कि अबू तालिब ईमान का कलमा पढ़ते, लेकिन उनके दोस्त अबू जाहल ने उनको कहा कि अबू तालिब मरते मरते अपने बाप दादा के दीन को छोड़ जाओगे। बिल्कुल मुझे ऐसे तरीका याद आ रहा है कि जैसे एक ऐसी सिस्टर है, मैं उनको बड़े करीब से जानती हूँ, माशाल्लाह उनके चार छः जितने भी बच्चे हैं सबकी शादियाँ खूब घूम घाम के धम धड़क से कर चुके। वो पिछले साल उनके बच्चे की शादी थी जो आखिरी बच्चा है, बच्चों बच्चियों में बिल्कुल आखिरी है, अब उनको समझ आ गई है अब दीन में कि इस्लाम क्या चाहता है, और रियलिटी बेस्ड शादियां होती हैं तो उसकी खुशी भी पता है। तो करीब थी वो इस बात पे कि मैं अपने आखिरी बच्चे की शादी सुन्नत के मुताबिक करूं, लेकिन उनकी बहनों रिश्तेदारों ने कहा चल छड़ परे, आखिरी रह गया दी भी ठीक कर दे, ए कहेगा बाकियां दी कीती ते मेरी नहीं कीती। तो उन्होंने मेरे से बात की, मैंने कहा कि अल्लाह करता कि अगर आप ये एक आखिरी शादी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कर देती ना, तो आप हुज्जत दे के जाती कि आप माशाल्लाह पहले बच्चों के बच्चे भी हैं और 2 4 6 सालों में उनकी शादियां शुरू होंगी, तो आप कह सकते कि हमने अपनी सुन्नत शुरू की थी। लेकिन बात सब हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है ना, वो हमें नहीं करने देता। तो अबू तालिब के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने आखिर में ये बात कह दी कि मैं अपने बाप अब्दुल मुतलिब के दीन पे हूँ। फिर उनका जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लम फिर उनसे बेनियाज हो गए। तो यहाँ ये बात है कि चाहे कितना कोई करीबी रिश्तेदार हो, मरने के बाद दुआ नहीं हो सकती। जिंदगी में दुआ करें, क्या करें, अल्लाह उनको हिदायत दे। और आपने तो शायद अभी सीरत नहीं पढ़ी होगी ना, अबू तालिब की इस्लाम के लिए कुर्बानी आप पढ़े ना तो आज बड़े बड़ों की नहीं है, 3 साल शाबे अबी तालिब में आपके साथ कैद रहे। इतना इस्लाम को डिफेंड करते थे कि अल्लाह के नबी के सामने वो एक चिटान थे, कहते थे भतीजे जो करना है करो मैं निपटूंगा। खानदान था और वो सरदार भी थे, इसलिए लोग उनकी इज्जत करते थे। इसीलिए तो उनकी वफात के मौके पर अल्लाह के नबी को फिर इतना बाद में सताया गया कि आमुल हुजन पड़ गया साल। फिर अब ताइफ गए, फिर वाकया मेराज हुआ, फिर अखीर हिजरत हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी भर कोशिश थी लेकिन इस्लाम की ये चीज़ें उनके लिए काम ना आई। नबी सल्लम ने अल्लाह ताला से पूछा था कि क्या मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, तो कहा कि आप दुआ नहीं कर सकते। इसी तरह सूरत कसस की आयत 56 में आप पढ़ेंगे इन्नक ला तहदी मन अहबबता, आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकते जिनके लिए आप चाहते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत में कि नबी सल्लम ने अपनी वालदा की मगफरत के लिए दुआ की, इजाज़त तलब की, जिस पर यह आयत नाजिल हुई, मुस्नद अहमद में ये रिवायत है। इसी तरह नबी सल्लम ने अपनी मुशरिक कौम के लिए दुआ फरमाई थी कि अल्लाहुम्मग़फिर ली कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, कि अल्लाह मेरी इस कौम को माफ़ कर दे, ये बेइल्म है, इनकी मगफरत कर दे। तो उस पे यानी ये सारी बातों का खुलासा क्या अगली आयत से अब और भी वाज़े होगा कि ज़िंदगी ज़िंदगी मुशरिक के लिए दुआएं की जा सकती हैं, लेकिन जब किसी का शिर्क पे मरना साबित हो। अब देखिए नबी के पास तो वही आती थी ना, मेरे और आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है। हमें जो ये ख्वाहिश होती है ना, मदर टेरेसा के साथ क्या हो रहा है और लेडी डियाना कहाँ गई, तो हम अपने हाल पे रोएं कि हमने ज़िंदगी में उनको दीन का पैगाम नहीं दिया, तो फिर हम अपनी फिक्र करें, उनको अल्लाह पे छोड़ दें, कोई फतवा ना दें। सही हदीस से बहुत कुछ बोल रही हैं, आप ऐसे मसले लोगों के साथ पेश करके उनको खामखा एक्सप्लॉइट ना करें, बस अपनी फिक्र करें कि हमें तो भी अपना भी नहीं पता कि हम किधर जाएंगे। इसलिए फरमाया कि मिम बाद इमा तबैन लहुम अन्नहुम असहाबुल जहीम, उनका पता चल गया वो जहन्नमी है, क्योंकि नबी के पास वही आती थी, मुझे आपको नहीं पता। ये कौन सी रुकावट थी? अभी आपने अल्लाह से सौदे की बात देखी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसका जोर अल्लाह पे चल सकता था? समझने की बात है, अपने सगे चचा के लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर पा रहे, अपनी माँ अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर पा रहे, अपनी कौम के लिए नहीं कर पा रहे, तो मेरे और आपके बारे में क्या ख्याल है? इसलिए हमें अपने अमाल की सलाह करनी है। फिर एक दूसरी मिसाल अल्लाह से बिके हुए शख्स इब्राहिम की दी जा रही है, आयत 114, बताया क्या जा रहा है कि इस रास्ते में अपनों से कभी कभी टकराव होता है तो करना पड़ता है, क्या करें, फिर हम मजबूर जो है हम बिक गए हैं, सॉरी इट्स माई लिमिटेशन। लिहाजा 114, बमा कान इस्तिग़फ़ार इब्राहिम अली अभी ही इल्ला मौइदतिम वादहा इय्याह, और नहीं था इस्तिग़फ़ार करना इब्राहिम का अपने वालिद के हक में मगर एक वादे की बुनियाद पर जो उन्होंने उनसे कर लिया था। ये क्या बात है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब इनके बाप ने घर से निकाला तो जाते जाते इन्होंने ये वादा किया था कि अब्बा जी मैं आपकी बख्शिश की दुआ करूँगा। कहाँ लिखा है? सूरत मरियम की आयत नंबर 47, नोट कर लीजिए, सअस्तग़फिरुलक रब्बी इन्नहु काना बिही हफिया, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। यानी बाप से दुआ का वादा किया था तो करने लग गए, लेकिन फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, फिर जब उन पर वाजे हो गया कि वो तो अल्लाह के दुश्मन हैं, तो तबर्रा मिन्हु, तो वो उनसे बेजार हो गए, एलाने बेजारी कर दिया, क्योंकि इन्न इब्राहिम अला अवाहुन हलीम, यकीनन इब्राहिम बहुत दर्द दिल रखने वाले और हलीमुत तबा थे। बहुत कुछ है इस हिकायत में हम सबके लिए। देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बड़ा नरम था, अल्लाह से डरते भी थे, मोहब्बत भी थी। ज़िंदगी भर उनको उम्मीद रही कि मेरा बाप पलट आएगा हिदायत पर, दुआ करते रहे। लेकिन जब उनकी मौत वाकई हो गई तो इस्तग़फ़ार बंद कर दी, क्योंकि अल्लाह ने मना कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी भर हज़रत इब्राहिम ने अपने बाप को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की है। यहाँ आपकी सिफात अव्वाहुन हलीम को देखते हैं। अव्वाह कौन होता है? आहें भरने वाला, दर्दमंद। बस दफ़ा हम दूसरों को जो खुश करना चाहते हैं ना, इसी सोच के साथ करते हैं कि मेरा दिल बड़ा नरम है, दिल नहीं तोड़ सकते, फिर दिल टूट जाएगा। ऐसी बातें होती है ना, बहुत सारे लोग अल्लाह की नाफरमानी नरम दिली के नाम पे करते हैं, फिर हमारा दिल बड़ा नरम है ना, फिर हमें तर्स आता है ऐसे लोगों पे। तो आइए ज़रा देखिए कि अल्लाह कौन है। लोगों ने नबी सल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को अव्वाहुन कहा है, इससे क्या मुराद है? अब आप 1 2 3 करते थे, मैं बगैर लंबी हदीस के सिर्फ आपको उनके मुख्तलिमानी बताती हूँ। नबी सल्लम ने फरमाया, बहुत रोने धोने वाला, अल्लाह ताला के सामने गिरिया उजारी करने वाला, इब्ने मसूद कहते हैं बहुत ही रहम करने वाला, फिर चौथा मखलूके खुदा के साथ नरमी और सलूक और मेहरबानी करने वाला। इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह उनसे मुराद है पूरे यकीन वाला, सच्चे ईमान वाला, तौबा करने वाला। और हबशी जुबान में अल्लाह मोमिन और मौकिन, यानी जिसको यकीन हो उसको कहते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि नबी सल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मुराद तस्बीह करने वाला, दोहा की नमाज पढ़ने वाला, अपने गुनाहों की याद आने पर इस्तिग़फ़ार करने वाला, अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाला, रब से डरने वाला, पोशीदा अगर कोई गुनाह हो जाए तो तौबा करने वाला है। नबी सल्लम के सामने एक शख्स का जिक्र हुआ, कहा कि वो अल्लाह ताला की बकसरत याद करता है और अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, तो आपने फरमाया कि वो अव्वाह है। इब्ने जरीर में कि अल्लाह के नबी ने एक मैयत को दफन करके फरमाया, यकीनन तू अव्वाह, यानी कसरत से तिलावते कुरान शरीफ करने वाला था। रिवायत में एक शख्स बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ करते हुए अपनी दुआ में अव्वाह अव्वाह कर रहा था। इसके इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी इसके दफन में शामिल थे, चूँकि रात का वक्त था इसलिए आप सल्लम के साथ चिराग भी था। ये रिवायत ज़यीफ़ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हज़रत इब्राहिम के नाते से कितनी खूबसूरत सिफात का पता चला। तो पता क्या चला कि हज़रत इब्राहिम से ज़्यादा हमारा दिल नरम नहीं, इसके बावजूद अल्लाह का हुक्म सुनकर रुक गए और लोगों की गलत बात ना मानी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हम भी इस तरह हदूद पे कायम रहें कि अल्लाह ताला की हद ही ना तोड़ दें अपनी नरम मिजाजी में। बाज़ लोग कहते हैं बड़े खुश अखलाक है इसलिए बस हम गैर महरमों से भी मिलते हैं, क्या करें अखलाक बड़ा अच्छा है, नहीं फिर हम इनकार नहीं कर सके कि अल्लाह देवर घर में आ गया तो फिर मैं कितनी बुरी बात होती अगर मैं उसको ना बैठती, बातें ना करती, कंपनी ना देती। देखिए, हाफिज़ून अली हदूद अल्लाह, हर चीज़ की एक हद है, हम जब हदें तोड़ देते हैं ना तो वो चीज़ फिर इंसान को तकलीफ़ देती है। इसके बाद अगली आयतों में अल्लाह ताला ने थोड़ी सी मज़ीद बात वाज़े की, और वो क्या है? आयत नंबर 115, वमा कानल्लाहु लियुदिल्ला कौमन बाद इज़ हदाहुम, और अल्लाह का ये तरीका ही नहीं कि किसी कौम को गुमराह कर दे इसके बाद कि इनको हिदायत दी हो। हत्तयुबय्यन लहुम मा यत्तकून, जब तक कि इन पर वाजे न कर दे कि इन्हें किस चीज़ से बचना है। सुभान अल्लाह, ये है माफ़ी का ऐलान उन लोगों को जिन्होंने इस हुक्म के उतरने से पहले अपने मुशरिक रिश्तेदारों के लिए दुआ कर दी थी। अल्लाह ताला यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, कोई बात नहीं, कानून तुम्हें आज पता चला है ना, आज से पहले जो तुम ऐसे काम कर चुके क्योंकि जाहिर नहीं थे तुम्हें माफ़ करूँगा। यहाँ एक बहुत बड़ी हुज्जत है, पहले तो इस पे ज़रा शऊर खोलिए। हम सब इल्म के सफ़र में ना, जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें अपनी पिछली ज़िंदगी के कई करतूत याद आते हैं, ये भी किया वो भी किया, इससे भी नहीं बचे उससे भी नहीं बचे, होता ऐसा कि नहीं? जब ये आए ना तो इस आयत को पढ़ के खुश हो जाए। अल्लाह आपको पिछली ज़िंदगी के कामों पे नहीं पकड़ेगा, क्योंकि हत तय्यबैन लहुम मा यत्तकून, लेकिन अब आप कहें कि अब आगे पढ़ना छोड़ देते हैं, ना पता चले ना हमें अल्लाह पकड़े। तो वही बात जो सूरह फातिहा में कही थी कि कोई बात नहीं, ना पढ़ के हम दुआलीन बनते हैं और पढ़ के अमल नहीं करते तो मखदूब बनते हैं, लेकिन अब रास्ता खुल गया, अब इसको नहीं छोड़ सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप में से यहाँ से कोई बर्मिंघम जाए, उसको नहीं पता था तो गलत रोड पे चलता गया, लेकिन जब पता चल गया कि ये रोड नहीं ठीक तो फिर वहाँ चलेगा, तो फिर उसकी हमाकत क्या है। तो गोया कि यहाँ अल्लाह ताला ने माफ़ी का ऐलान किया, और इन अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। इन अल्लाह लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, यकीनन अल्लाह ही के लिए आसमानों ज़मीन की बादशाही, युही व युमीत, वही जिंदा रखता है और वही मौत देता है। क्यों डरते हो लोगों से, अल्लाह क्या तो बिको। सबसे बड़ा ख़तरा जो किसी इंसान को होता है ना, वो अपनी मौत का होता है, मैं मर ना जाऊँ। अल्लाह कहते हैं जिंदगी और मौत का खजाना मेरे हाथ में, तुम मुझसे जान बचाकर अगर अपने आप को जिंदा रख भी लेते हो तो क्या हुआ, एक वक्त आएगा कि तुमने मेरे पास आना ही है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, और फिर अल्लाह के सिवा ना तो तुम्हारा कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार होगा। क्या बता दिया कि अल्लाह सुबहाना ताला तुम्हें किस तरह से इन सारी चीज़ों पे लेता है कि तुम अल्लाह पे रहो। यहाँ पे देखिए कि सबक भी पूरा होता है और टॉपिक भी पूरा हो रहा है। किस एंगल से पूरा हो रहा है कि अल्लाह के हाथों बिक जाओ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक दे, और हम अल्लाह ताला से बड़ी आजिज़ी के साथ ये दुआ करेंगे कि अल्लाह हम तो ऐसे ही हैं, कटे फटे, ख्वाहिशों के मारे हुए, लोगों के डसे हुए, तमन्नाओं और अरमानों में अपनी पिछली जिंदगियों को नासूर बनाए हुए, तो हमें ऐसे ही कबूल कर ले। और अब इस सफ़र में तू हम सबको इस तरह जमा दे कि हर दिन हम इतने खूबसूरत हो जाएं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व तूबु इलैक। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.